उदय की मम्मी नंदिनी के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नंदिनी बेटा, आप बहुत अच्छी हो और हमारे उदय के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। हमें तुम्हें अपनी बहू मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप दोनों हमें माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ हमारे साथ वापस घर चलिए। घर आप सबके बिना बहुत सुना सुना लग रहा है। इतने दिनों में हमें एहसास हो गया है कि बच्चे ही हमारी असली दौलत होती हैं और हम आप सबके बिना नहीं रह सकते। प्लीज़ नंदिनी, प्लीज़ उदय, चलिए हमारे साथ। उदय अपने मम्मी पापा की तरफ देख रहा था। उन दोनों की ही आंखों में आंसू थे। तभी उदय ने उन दोनों को घूरते हुए देखकर कहा, आप लोगों की बात पर हम कैसे यकीन करें? मम्मी, कैसे भूल जाएं हम वो सब जो आपने हमारी और इप्सिता के साथ किया और जो हमारे साथ करने जा रहे थे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप अपने ही फायदे के लिए हमें यहां से बुलाने के लिए आए होंगे। उदय के पापा ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, उन्होंने उदय का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सच में अपने किए पर पछतावा है और हम अब अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। उदय बेटा, बताइए हम अपनी इस गलती को कैसे सुधारें और आपको हम पर कैसे यकीन होगा? हम आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हम आपसे हाथ जोड़कर माफी भी मांग लेंगे। इतना बोलकर उदय के पापा अपना हाथ जोड़ने जा ही रहे थे कि तभी नंदिनी ने उदय के कंधे पर अपना हाथ रखा और उदय की आंखों में आंखें डालकर देखा और उसे आगे बढ़कर उन्हें रोकने का इशारा किया। नंदिनी की तरफ देखते ही उदय उसकी आंखों का इशारा समझ गया और उसने आगे बढ़कर अपने पापा के हाथों को पकड़ते हुए कहा, नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत करिए। हमें आप पर भरोसा हो गया है। आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम अभी इतने बड़े नहीं हो गए। नंदिनी ने जैसे ही उदय की ये बात सुनी, वो उदय की मॉम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उदय जल्दी से आगे बढ़कर अपने पापा के गले लगाते हुए बोला, मुझे इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। उदय के पापा ने उदय की पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हाँ, लेकिन शायद हमने बहुत देर कर दी अपनी गलती का एहसास करने में। उदय ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, कोई देर नहीं हुई है और हमने भी आप दोनों को बहुत मिस किया। इतना बोलकर उदय ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और उन्हें आगे बढ़कर गले लगा लिया। उन तीनों की आंखों में आंसू थे। और नंदिनी इन तीनों को एक साथ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी नंदिनी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और चुपके से उन तीनों की ऐसी गले लगाई हुई पिक को क्लिक कर लिया।
तभी अभिमन्यु ने इप्सिता के हाथ को पकड़ा और उसकी उंगलियों से खेलते हुए बोला, आपको इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं ना आपके साथ, और जब हम हैं तो फिर किस बात की टेंशन। वैसे भी हमने सब कुछ बहुत पहले से अरेंज कर लिया है। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हमारी लाइफ में जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही अच्छा होगा। इप्सिता अभिमन्यु के कॉन्फिडेंस को देखकर थोड़ी सी रिलैक्स हुई और उसने अभिमन्यु के हाथ की तरफ देखा। अभिमन्यु के हाथ उसकी उंगलियों को बड़े ही प्यार से छू रहे थे। इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ को पकड़ लिया और उसने धीमी आवाज में कहा, सच बताएं तो हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारी आपसे शादी हो गई है और कल हमारा रिसेप्शन है। इप्सिता ये बात बोलकर थोड़ी सोच में पड़ गई। अभिमन्यु उसके चेहरे की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, हम जानते हैं इप्सिता, आपको हमारे साथ पूरी ट्रेडिशनल शादी करनी थी। आप हमें अपना पति बनाना चाहती थीं, अग्नि के साथ, फेरों के साथ, लेकिन हमने आपसे इतनी जल्दबाजी में कोर्ट मैरिज की कि हमें इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिला। अभिमन्यु इप्सिता के चेहरे की तरफ देखकर ये सारी बातें अपने मन में बोल रहा था। तभी उसने खुद को संभालते हुए कहा, उठिए और आप यहाँ पर बैठिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता को बिठाया और उसके पैरों पर ब्लैंकेट डालते हुए कहा, थोड़ी देर आप रेस्ट करिए, हमें आपके चेहरे पर थकान साफ नज़र आ रही है। थोड़ी देर आप सो जाएंगी तो ठीक रहेगा, वरना कल आप पूरे फंक्शन में टायर्ड लगेंगी। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर धीरे से अपना सिर हाने हिलाते हुए बोली, हाँ, वैसे भी हम अपने रिसेप्शन में टायर्ड नहीं लगना चाहते। इतना बोलकर इप्सिता भी बेड पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अभिमन्यु ने अपना फोन उठाया और किसी से बात करते हुए वो बाहर चला गया। 3 घंटे बाद अभिमन्यु वापस रूम में आया और उसने देखा कि इप्सिता अभी भी सो रही थी। वो इप्सिता के बगल में बैठा और उसने इप्सिता के चेहरे पर आए उसके बालों को किनारे किया। उसके गाल पर हल्के से अपनी उंगलियों को टच करते हुए कहा, इप्सिता उठिए। जैसे ही अभिमन्यु की आवाज़ पर इप्सिता उठकर बैठ गई, वो अभी भी नींद में लग रही थी। अभिमन्यु ने इप्सिता के गाल को छूते हुए कहा, चलिए फ्रेश होकर आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। इप्सिता ने उबासी लेते हुए कहा, क्या बात है बताइए, और वो वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम से 10 मिनट के बाद इप्सिता निकल कर आई और उसने अपने चेहरे को टॉवल से पोंछा। सीधे अभिमन्यु के पास आते हुए बोली, क्या बात है बताइए। टू बी कंटिन्यूड। अभिमन्यु को आखिर क्या कहना है, क्या बात करनी है उसे अब इप्सिता से, क्या लगता है आप लोगों को बताइए कॉमेंट में। ये कहानी बस अपने एंडिंग पर पहुँच रही है, जल्द ही एक बहुत ही अच्छे मोड़ पर एंड भी हो जाएगी।